ये आकाशवाणी दिल्ली है। आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए 1 सितंबर से शुरू करेगी आपका विधायक आपके द्वार अभियान। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध ई सिगरेट और चाकू की बिक्री करने वालों का किया भांडाफोड़। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पेड़ों के संरक्षण के लिए किया चौथे चरण के डिजाइन में बदलाव, एक पेड़ काटने पर 10 पौधे लगाने का प्रावधान। और आज देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कृष्ण मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी 1 सितंबर से राजधानी में आपका विधायक आपके द्वार अभियान की शुरुआत करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में पार्टी के नेताओं ने दिल्ली की प्रत्येक विधानसभा और देश की मौजूदा राजनीति को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ संदीप पाठक ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत विधायक मंडल और बूथ स्तरों पर सभाएं आयोजित की जाएंगी।
आपका विधायक आपके द्वार कैंपेन की शुरुआत करेंगे, जिसमें जितने भी मंडल लेवल पे हैं और बूथ लेवल पे, वहां पर हमारे विधायक जाएंगे और वहां पे सभाएं होंगी और जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर डिस्कशन करेंगे, काम पे डिस्कशन करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ षड्यंत्र कर रही है उसको उजागर करेंगे।
इस दौरान जनता को सरकार के कामों से अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्री सिसोदिया की जारी पदयात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह, दिल्ली प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन सहित कई क्षेत्रों से विधायक भी मौजूद रहे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नए अभियान आपका विधायक आपके द्वार को पार्टी का नया शिगुफा बताया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्ष से जनता से दूर रही है और इसका नतीजा लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी हार के तौर पर देखने को मिला है। श्री सचदेवा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की हार का एक मुख्य कारण पार्टी नेतृत्व में भ्रष्टाचार था। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी हताशा के दौर से गुजर रही है और उसके विधायकों के खिलाफ लहर चल रही है। श्री सचदेवा का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार तय है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध ई सिगरेट और चाकू की बिक्री और खरीद में शामिल एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 11 लोगों को राजधानी के पंजाबी बाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ई सिगरेट के 2700 से अधिक पैकेट जब्त किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 750 की संख्या में अवैध चाकू और आपूर्ति में इस्तेमाल की जाने वाली दो कारें भी बरामद की गई हैं। दिल्ली पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया है कि ये गिरोह देश के कई राज्यों में सक्रिय था, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ई सिगरेट और अवैध हथियारों की आपूर्ति करता था। उन्होंने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह पिछले 8 महीने में लगभग 1000 चाकुओं की आपूर्ति देशभर में कर चुका है, जिसमें से करीब 75% चाकुओं की बरामदगी अपराध शाखा अभी तक कर चुकी है। श्री गोयल ने कहा कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए अपराध शाखा ने कई राज्यों में अभियान चलाया हुआ है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकारों की निष्क्रियता और आपसी लड़ाई के कारण दिल्ली में कानून व्यवस्था ठप है, जिस कारण शहर में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। श्री यादव ने दावा किया है कि पिछले 5 वर्षों में दिल्ली में आपराधिक मामलों में 65.96% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने शिकायत निवारण को समयबद्ध और सार्थक बनाने के उद्देश्य से व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि नागरिक अपनी शिकायतें www.pgportal.gov पर दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रालयों और विभाग को इन शिकायतों के समाधान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। निपटाई गई शिकायतों के बारे में जानकारी लोगों को एसएमएस और ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के पोर्टल ने साल 2022 से 2024 के दौरान लगभग 60 लाख सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया है। पिछले दिशा निर्देशों के तहत शिकायत निवारण की समय सीमा 30 दिन थी, जिसे अब घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज देवली विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से देवली क्षेत्र में सड़क और नालियों का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक प्रकाश जरवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री भारद्वाज ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है शहर के 2 करोड़ लोगों को बेहतर सड़कें, स्वच्छ नालियां और सुंदर पार्क मिले, ताकि शहर की सुंदरता के साथ साथ लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। उन्होंने बताया कि देवली विधानसभा क्षेत्र में ये कार्य दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने लगभग 70 पेड़ों को बचाने के लिए अपने चौथे चरण के डिजाइन में बदलाव किया है। मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि चौथे चरण के निर्माण के लिए लगभग 15,500 पेड़ों को अनुमति सहित काटा जाना था। उन्होंने आगे बताया कि जनकपुरी पश्चिम और आरके आश्रम मार्ग के बीच निर्माणाधीन गलियारे के बीच लगभग 70 पेड़ों को और काटा जाना था, लेकिन यहां मेट्रो ने चौथे चरण के डिजाइन में बदलाव किए हैं। DMRC ने बताया है कि चौथे चरण के कार्य के लिए अभी तक लगभग 5,000 पेड़ काटे गए हैं और करीब 7,000 पौधे लगाए गए हैं। मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि DMRC ने एक पेड़ काटने पर उसकी जगह 10 पौधे रोपने का प्रावधान किया है। दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह ने कहा है कि एकीकृत पेंशन योजना UPS की अनूठी विशेषताओं से रेलवे कर्मचारियों सहित 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। श्री सुखविंदर सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को UPS से जुड़ने का विकल्प मिलेगा। उन्होंने UPS की सुनिश्चित पेंशन और मुद्रास्फीति सूचकांक जैसी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये विशेषताएं कर्मचारियों के लिए और अधिक आकर्षक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि GEM, UPI और ULI की नई तिकड़ी भारत के डिजिटल भुगतान में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तित यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI प्लेटफॉर्म भारत में ऋण प्रक्रिया को सरल बनाएगा। श्री दास बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के हिस्से के रूप में बेंगलुरु में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान की मौजूदा व्यवस्था से धन का त्वरित और सुरक्षित हस्तांतरण होता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। देशभर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। एक रिपोर्ट।
श्रीकृष्ण के 5,251वें जन्मोत्सव पर सभी श्रीकृष्ण मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मथुरा में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आज मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यरात्रि 12 बजे घर घर कान्हा जन्म देंगे। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, प्रेम व इस्कॉन मंदिरों में दर्शन के लिए रविवार से ही लाखों की संख्या में देश विदेशों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। रोशनी से नहाए इन मंदिरों की आभा हर किसी को आकर्षित कर रही है। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की जय घोष से पूरा ब्रज क्षेत्र सराबोर है। उत्तर प्रदेश में बाजार जन्माष्टमी के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। दुकानों पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां और लड्डू गोपाल के लिए पीले रंग की पोशाक, झूले और श्रृंगार का सामान खूब बिक रहा है। साथ ही सभी पुलिस लाइन्स और थानों में जन्माष्टमी का पर्व भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। वहीं आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर राधा कृष्ण युगल जोड़ी की पूजा अर्चना की और मंदिर वाटिका में एक पेड़ लगाया। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं को सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पावन धरा पर पूर्ण अवतार लेकर धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का कार्य किया था। उन्होंने देशवासियों से श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो सके। मथुरा से मोहम्मद कुरैशी के साथ शैलेन्द्र शर्मा, आकाशवाणी लखनऊ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों और विदेश में रह रहे भारतीयों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रसन्नता और उल्लास ये पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का कृष्ण अर्जुन संवाद सभी के लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत है। राष्ट्रपति ने देशवासियों से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाते हुए देश के विकास में योगदान देने का आग्रह किया। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। अपने संदेश में श्री धनखड़ ने कहा है कि जन्माष्टमी गहरे आध्यात्मिक महत्व का दिन है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के जन्मदिन के इस अवसर से दैवीय प्रेम, बुद्धि, विवेक और सत्यनिष्ठा की भावना गहराई से जुड़ी हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व धर्म के शाश्वत मूल्यों, बुराई पर अच्छाई की विजय और सच्चाई तथा सहिष्णुता से युक्त जीवन के महत्व की याद दिलाता है। श्री धनखड़ ने इस अवसर पर नागरिकों से सत्यनिष्ठा के पथ पर चलने और सभी के कल्याण के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे नेत्रदान के महत्व विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान डॉ शिखा जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नेत्र विज्ञान विभाग डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल से हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। टेलीफोन नम्बर 0112342050 और 0112331444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन CDOE ने स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की है। CDOE नए सत्र की शुरुआत इस वर्ष के सितंबर या अक्टूबर में UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार कर सकता है। नए सत्र में कुछ नए अध्ययन केंद्र भी शामिल किए जा सकते हैं। राजधानी के कुछ इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए 1 सितंबर से शुरू करेगी आपका विधायक आपके द्वार अभियान। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध ई सिगरेट और चाकू की बिक्री करने वालों का किया भंडाफोड़। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पेड़ों के संरक्षण के लिए किया चौथे चरण के डिजाइन में बदलाव, एक पेड़ काटने पर 10 पौधे लगाने का प्रावधान। और आज देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कृष्ण मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।